أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سورة الدخان آيات 2-7 رمضان ایک دفعہ پھر امسال اپنے اس عشرے میں داخل ہو رہا ہو گیا ہے جس میں رمضان کی راتیں نسبتاً زیادہ بھیگ جاتی ہیں اور دن بھی بھیگ جاتے ہیں. یہ وہ عشرہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا عشرہ ہے. اگرچہ ہر دن انسان پر دعا کی قبولیت کا دن بن کر چڑھ سکتا ہے اگر اسے سچی توبہ اور استغفار کی توفیق ملے, لیکن یہ وہ دن ہیں جو خصوصیت کے ساتھ قبولیت دعا کے دن کہلاتے ہیں, اور یہ وہ راتیں ہیں جو خصوصیت کے ساتھ قبولیت دعا کی راتیں کہلاتی ہیں, کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی خبر دی ہے کہ ان راتوں میں گویا خدا اپنے بندوں کے زیادہ قریب آ جاتا ہے. ان راتوں کے ساتھ کچھ خاص تقدیریں وابستہ ہیں, اور ان تقدیروں کو القدر کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا. القدر سے مراد سارا نظام تقدیر بھی ہے, اور بھی اس سے بہت سے معنی ہیں جن سے متعلق میں مزید کچھ گفتگو کروں گا, مگر یہ وہ راتیں ہیں جن میں انسان کی تقدیر بنائی جاتی ہے اور انسان اس تقدیر کی بننے کی راہ میں روک بھی بن جاتا ہے اور خود اپنے مقدر کو بگاڑ بھی لیتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا مقدر بنا ہے اور کس کا بگڑا ہے. ان معنوں میں بھی لیلۃ القدر کا تعلق ساری انسانی زندگی کے ماحصل سے ہے, اور انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر من الف شہر, یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ہزار مہینہ انسان کی اوسط زندگی کو ظاہر کرتا ہے, اور ایک قدر کی رات جس میں انسان کی تقدیر بن جائے اس کی ساری زندگی سے بہتر ہے, کیونکہ اس کے ساری زندگی کی غفلتیں, اس کے گناہ اس رات میں دھوئے جا سکتے ہیں. और अगर ये रात उसे नसीब ना हो तो सारी ज़िंदगी बातिल ठहरती है। लैलतुल क़द्र जिसकी तलाश का हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे में ताक रातों में हुक्म दिया है, इसका एक ताल्लुक़ तो फ़र्द के साथ है और एक मुअय्यन रात के साथ है। यानी ऐसी रात आती है जिसमें कबूलियत का एक ख़ास लम्हा इंसान को अता किया जाता है और ये रात एक मुअय्यन रात बन कर आती है और आखिरी अशरे में एक 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं या 29वीं रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। फरमाया इसको तलाश करो, इसका मतलब ये है कि आखिरी अशरे में गैर मामूली तौर पर जद्दोजहद करो और अपनी कमरें कस लो, जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि आखिरी अशरे में अपनी कमर कस लिया करते थे। पहले भी बहुत इबादत करने वाले थे मगर इबादत का जो जोश व खरोश आखिरी अशरे में ज़ाहिर होता था उसकी कोई मिसाल नहीं, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और तलाश करो कि तुम्हें नसीब हो जाए, जिसका मतलब ये है कि ये रात हुआ तो मुअय्यन लेकिन हर शख्स के मुकद्दर में नहीं है। और क़द्र के एक ये भी माने इस रात पर सादिक आते हैं कि ये रात खुद ब खुद हाथ बढ़ाकर हर एक को नसीब नहीं हो सकती, बल्कि ये रात खुद फैसला करेगी कि मैंने किसका मुकद्दर बनना है और किसका मुकद्दर नहीं बनना। बस इन मानों में अफराद के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, एक मुअय्यन रात आती है, मुअय्यन अशख़ास को नसीब होती है और बहुत से हैं जो बदनसीबी में मारूम रह जाते हैं। इसकी पहचान में नूर की तलाश की बहुत बातें की जाती हैं और ये बयान किया जाता है कि रोशनी नाजिल हो, आसमान में बादल हों, छींटे पड़ें और ख़ास किस्म की रोशनी का आप मुशाहदा करें, लेकिन हकीकत यह है कि ये मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है और पाक तब्दीली की रात है। वो नूर है जिसको तलाश करना चाहिए और ये नूर ज़ाहरी तौर पर भी मुतमस्सल हो सकता है, इससे इनकार नहीं, लेकिन ये दिल में एक शोले के तौर पर गिरता है और जिसके दिल पर यह नूर नाजिल हो वो जान लेता है कि आइंदा उसकी ज़िंदगी एक तब्दील शुदा ज़िंदगी है, उस पर इनकलाब आ चुका है, पहली ज़िंदगी नहीं रही और पहली ज़िंदगी उसके मुकाबले पर एक रात दिखाई देती है जिसके आखिर पर वो तौबा और कबूलियत की फजर नमूदार होती है, जिसके मुतल फरमाया गया हत्ता मतलाइल फजर। मतलब फजर तक ये रात जारी रहेगी, यानी क़द्र की का आखिरी मुकाम मतलब फजर है और ये मतलब फजर जिसको नसीब हो जाए गोया उसे क़द्र की रात मिल गई। अगर मतलब फजर ना हुआ तो अंधेरा तो उसके मुकद्दर में रहा लेकिन क़द्र की रात नसीब ना हुई। लैल और लैला में एक फ़र्क है जो मरजूकी ने खसूसियत से बयान किया, वरना बहुत से अहले लुगत ये कहते थे, ये कहते रहे हैं, अब भी कहते होंगे कि लैल और लैला एक ही चीज़ के दो नाम हैं, लेकिन मरजूकी ने बहुत ही हिकमत की बात की है। मरजूकी ने कहा कि लैल और लैला मुश्तरक माने भी रखते हैं, दिन के मुकाबले पर रात, नहार के मुकाबले पर लैल, ये मुमकिन है कि उसी तरह हम वज़न और हम माना हों जैसे यौम के मुकाबले पर लैला कहा जाता है। लेकिन मरजूकी ने कहा कि हकीकत में जिस तरह लैल और नहार का जोड़ है उसी तरह यौम और लैला का जोड़ है और इन दोनों के अंदर मुश्तरक माने पाए जाते हैं। नहार एक आम दिन को कहते हैं, ज़माने को नहीं कहते। चुनांचे क़ुरान करीम में आपको कहीं भी नहार का लफ्ज़ एक वसी ज़माने पर इतलाक़ पाता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन यौम का लफ्ज़ हमेशा कुरान करीम में एक मुअय्यन दिन से बहुत बढ़कर एक फैले हुए वसी जमाने को जाहिर करने के लिए बयान फरमाया गया। चुनाचे छः याम में ज़मीन और आसमान की पैदाइश ये जाहिर करता है कि बहुत वसी ज़माने से भी यौम का ताल्लुक़ है। फिर ऐसे यौम का ज़िक्र कुरान करीम में फरमाया जो 1,000 साल के मुद्दत का के बराबर है, उस शुमार के मुताबिक जो हम करते हैं। 5,000 साल का दिन भी बताया गया और 50,000 साल का यौम भी बयान फरमाया गया। तो अगर मज़ूक़ी की बात दुरुस्त है और यकीनन दुरुस्त है तो लैला में भी उसी तरह वसत पाई जाएगी और वसी ज़माना पाया जाएगा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का और कुरान करीम का किसी एक मुअय्यन रात से जो नहार के मुकाबिल की लैल हो ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी वसी रात से ताल्लुक़ है जिसके मुकाबिल पर यौम आता है और जो वसी ज़माना रखती है। इन अफराद को तो एक रात का एक लम्हा नसीब हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बन जाती है और ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, मगर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद इससे बहुत ज़्यादा वसी था। इसलिए आपके ऊपर लैलतुल क़द्र का मज़मून अपनी पूरी वसअत और पूरी शान के साथ चस्पा होगा और हरगिज़ इसे एक आम इंसान के ऊपर सादिक़ आने वाले लैलतुल क़द्र के मज़मून के मुसावी करार नहीं दिया जा सकता या मुशावी भी करार नहीं दिया जा सकता। ये वो मानी हैं जिनकी तरफ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई और फरमाया कि लैला से मुराद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के की नस्बत से ये बनती है कि सारा ज़माना मासियतों और दुखों में कुल्लियतन डूब चुका था। ऐसी मसाइब की रात थी, ऐसी गुनाहों के गैर मामूली तौर पर बढ़कर छा जाने की रात थी कि गोया ज़ुल्मात हर जगह मुसल्लत हो चुकी थी। इन अंधेरों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमका और ये उस रात की फजर थी, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह का नूर नाजिल हुआ है ये वो नूर है जिसने रात की तकदीर बदली है। और हत्ता मतलाइल फजर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुलू मुराद है और इसी नस्बत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज बयान फरमाया गया, जबकि दीगर अंबिया को मुख्तलिफ अलकाबात मिले हैं सूरज का लफ्ज़ खसूसियत के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकद्दर फरमाया गया। और इसमें लैलतुल क़द्र के मानी और फजर के मानी मुज़मिर हैं, यानी खुदा के इस फैसले में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को सूरज बयान फरमाया जाए। लैल कभी निसर दुनिया पर आती है, कभी दूसरी निसर दुनिया पर आती है और सूरज वो है जो दोनों दुनियाओं की किस्मत बदल देता है, दोनों दुनियाओं के अंधेरों को बातिल करके दिन चढ़ा देता है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आलमी इनकलाब बरपा फरमाना था उसका ताल्लुक़ ज़मीन के किसी एक ख़त्ते से नहीं था, बल्कि तमाम कायनात पर जो रात छाए छा जानी थी और छा चुकी थी। छा जानी के मानों पर मैं मज़ीद रोशनी डालूँगा, जो छा चुकी थी रात उसका ज़िक्र करते हुए मैं फिर इस मज़मून को शुरू करता हूँ। वो ऐसी रात थी जिसमें जिसके मुतल्लिक़ कुरान करीम फरमाता है ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर, यानी खुश्की और तरी सारे फसाद से भर गए थे। उस वक्त क़द्र की रात क्यों करार दी, उस रात को क़द्र की रात क्यों करार दिया गया जो गुनाहों और जुल्मात के गैर मामूली तौर पर दुनिया पर छा जाने और उसको मगलूब करने की रात थी? इसलिए कि क़द्र की रात में खुदा ने उस रात की आखिर सुन ली और उस रात को दिन में तब्दील करने वाला सूरज चढ़ा दिया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर ज़ाहिर हुई। इन मानों में आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर बनकर दुनियाए मासियत पर तुलू हुए और जिसने भी आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के हसूल के लिए अपने किवाड़ खोले, अपने रोशनदान खोल दिए, अपने दिल के दरीचे खोल दिए, उसने आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पा लिया और उसके तमाम अंधेरे रोशनियों में बदल गए। जिसने इस नूर के सामने आने से गुरेज किया या इसकी नूर की रोशनी को कबूल करने में अपनी ज़ात के खिलाफ खसासत से काम लिया और कंजूसी से काम लिया, कुछ कोनों पर पर्दे डाल रखे और कुछ हिस्से इस नूर के लिए पेश कर दिए, उनकी हालत मिली जुली सी हालत है। आँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से किसी हद तक फैजयाब हुए और कुछ अंधेरे कोने बाकी रख दिए। इनसे क्या सलूक होगा इसके मुतल्लिक कुरान करीम से पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहे तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, चाहे तो उनको पकड़ ले, उनका मामला महफूज मामला नहीं है और मुकाम खौफ उनके लिए मौजूद है। बस इस मुकाम खौफ को दूर करने के लिए यह रात आती है जो इनफरादी पैगाम बनकर आती है। उम्मत मोहम्मदिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी तादाद ऐसे इंसानों की है जो मुकाम खौफ पर मौजूद हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की पूरी तरह कदर नहीं कर सके, बहुत से उनकी जिंदगियों के गोशे अंधेरे हैं, बहुत से उनके अखलाक तारीख अखलाक हैं और वो उन अखलाक के ज़रिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को मुनक़िस नहीं करते बल्कि अपनी ज़ात की तारीखियों को अखलाक की शक्ल में दुनिया पर ज़ाहिर कर रहे होते हैं। बस ये अजीब किस्म का एक मजमू तज़ाद बन जाता है। कुछ नूर है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में ज़ाहिर हो रहा है और कुछ अंधेरे हैं जो अपनी ज़ात से फूट रहे हैं। इस कैफियत में मुसलमानों की भारी अक्सरियत मुबतला है। इनके लिए सुबह कैसे नाजिल होगी, इनके अंधेरे किस तरह रातों में रोशनियों में तब्दील किए जाएंगे? उसके जवाब के तौर पर यह लैलतुल कदर हमें एक नेमत खुदा तआला की तरफ से अता हुई है और यह फरमाया गया है कि तुम सारा साल जितनी कोशिश करते हो, सारी जिंदगियां जितनी कोशिश करते हो और तुम उन कोशिशों के नतायज हासिल करने में नाकाम रह जाते हो, तुम्हारे लिए मायूसी की कोई बात नहीं। जिस ज़ात को मैंने दुनिया के अंधेरों को रोशनी में तब्दील करने के लिए भेजा है, उस ज़ात पर जिस रात मैंने या जिन रातों में मैंने कुरान करीम का नज़ूल फरमाया, ये रातें मुझे इतनी प्यारी हैं कि अगर इन रातों में उठकर मेरा कोई बंदा मुझसे कामिल खलूस के साथ बख्शिश तलब करेगा और अपने पुराने गुनाहों से तायब होते हुए मेरे गुफरान की चादर में लिपटने के लिए बेचैन हो जाएगा, तो मैं उससे वादा करता हूँ कि ये रात उसकी ज़िंदगी की तमाम रातों और तमाम दिनों से ज़्यादा बेहतर होगी और वो अपनी ज़िंदगी के मकसूद और मतलूब को पा जाएगा। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसूद और मतलूब दोनों दुनियाओं को रोशन करना और हर ज़माने के लिए रोशन करना और हर ज़माने के लिए रोशन करते चले जाना था और अफराद के लिए पैगाम ये था कि वो ऐसी रात को तलाश करें जिससे उनकी सारी ज़िंदगी रोशन हो जाए। चुनांचे लैलतुल क़द्र का दौर यानी इस आखिरी अशरे का दौर हमारे लिए वो मुबारक रात लेकर आती है, लेकिन अफसोस है कि हम अक्सर इस अशरे की ख़ास रातों में से गुजरने के बाद लैलतुल क़द्र को तलाश करते हुए गुजरने के बावजूद फिर वापस अपनी तारीख रातों की तरफ लौट जाते हैं। वो तारीख रातें जो हमारे अपने गुनाहों और हमारी अपनी कमज़ोरियों की रातें हैं, जिनको लैलतुल क़द्र नहीं कहा गया, जो सिर्फ रातें ही हैं क्योंकि उनके साथ क़द्र की कोई खुशखबरी नहीं दी गई। बस यही वो रातें हैं जो क़द्र की रातें हैं जिनमें खुदा तआला की तकदीर खैर भी ज़ाहिर होती है और तकदीर शर भी। तकदीर शर उन बदनसीबों के लिए जो इन रातों से फ़ायदा उठाए बगैर इनसे गुजर जाते हैं, और तकदीर शहर उनके लिए खैर उनके लिए जो इन रातों में से कोई एक ऐसा लम्हा पा जाते हैं जिसकी चमक दमक जिसकी लमात उनकी सारी जिंदगी की तारीखियों को रोशन कर देती है। बस ये वो ख़ास मुबारक रातें हैं जिनमें हम दाखिल हो चुके हैं और जमात अहमदिया को इनकी तरफ खसूसियत से तवज्जो करनी चाहिए और हम में से हर शख्स को इनफरादी तौर पर ये कोशिश करनी चाहिए इन रातों से गुज़र कर वो एक नया इंसान बन कर निकले और उसकी अपनी तारीख रातें हमेशा के लिए उससे मुंह मोड़ लें और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज हमेशा के लिए उस पर रोशन हो और उसके हर तारीख गोशे को रोशनी में तब्दील फरमा दें। दूसरा माना ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखने वाला जो माना है इसकी तकरार की तरफ कुरान करीम में इशारा है और इसीलिए मैंने आज की तिलावत के लिए सूरह कदर की को नहीं चुना बल्कि सूरह दुखान की उन आयात को चुना है जिनमें लैलतुल कदर के दोबारा ज़ुहूर का ज़िक्र फरमाया गया है और ये खुशखबरी दी गई है कि आइंदा ज़माने के अंधेरों को भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत सानिया के ज़रिए रोशनी में तब्दील फरमाया जाएगा और ये आ हज़रत ही का फैज़ होगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नूर होगा जो दोबारा आखिरी ज़माने में चमकेगा। सूरह दुखान में इन आयात को रखने में एक बड़ी हिकमत है। सूरह दुखान वो सूरत है जो अंधेरों से ताल्लुक़ रखती है जिसके मुतालिक फरमाया गया कि धुआं दुनिया पर छा जाएगा और बड़ा मोहलिक धुआं होगा। मादी लिहाज से भी वो मोहलिक धुआं होगा, उसमें उसकी रेडिएशन ज़िंदगी को हलाक करने वाली होगी और रूहानी लिहाज से भी एक ऐसी तहजीब का धुआं होगा जो सारी दुनिया को रूहानी हलाकतों में मुबतला कर देगा। जिस पर उस धुएँ का साया आया वो उसके लिए मौत यानी रूहानी मौत का पैगाम बन कर आएगा और जिसने उसको कबूल किया और उससे महफूज न रहा उसकी उखरवी ज़िंदगी गोया के हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो गई। ऐसे मौके पर खुशखबरी भी तो कोई होनी चाहिए थी कि वो बचने की राह भी तो तजवीज़ होनी चाहिए थी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से डराया और सूरह दुखान के मज़मून को दज्जाल के साथ बांधा और हमें इस बात की अक़ल अता फरमाई कि दज्जाल का ज़माना सूरह दुखान में बयान हुआ है और उससे बचने के लिए हमें बहुत सी नसाए फरमाई। उन नसाए में से एक ये भी है कि हम दज्जाल के ज़माने से बचने के लिए सूरह कहफ़ की पहली चंद दस आयात और आखिरी दस आयात की तलावत किया करें क्योंकि इनमें दज्जाल की निशानदेही होती है। दज्जाल की दोनों हैसियतों की निशानदेही होती है, उसके मज़हब की भी तय्यीन की गई है खुले खुले लफ्ज़ों में और उसकी साइंसी तरक्की का भी आखिरी सूरतों में ज़िक्र है। जो सुनू न सुना कहकर फरमाया कि वह सनत व हिफत में इतना हैरत अंगेज़ तरक्की करेगा कि वो खुद बड़े फ़ख्र से समझा करेगा और सोचा करेगा कि देखो मैं किस शान का खालिक बन गया, कैसी कैसी अजीब और अजीम सनतें पैदा कर रहा हूँ, गोया वो खुदा के मुकाबले पर खुदाई का दावेदार भी बन बैठेगा। ऐसे मौके पर इनके दो दज्जाल के दो फितनों से बचने की तरफ इशारा फरमाया गया। एक फितना मज़हब का फितना है यानी खुदा के साथ शरीक ठहरा लेना और आजिज बंदों को खुदा का जाहिर वाक़ियातन बेटा करार दे देना और दूसरा फितना इनकी तहजीब और तमद्दन और सनतों के नतीजे में फैलने वाले शर का फितना है। बस इस मौके पर इनसे बचने के लिए क्या ज़ुहूर पज़ीर होगा, फरमाया गोया कि एक और लैलतुल क़द्र जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैलतुल क़द्र है आखिरी ज़माने में भी ज़ाहिर होगी और उस ज़माने की भी सुनी जाएगी। اس مضمون کو مختلف رنگ میں قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ ایک جگہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی زمانے کی قسم ہے کہ سارا زمانہ گھاٹے میں چلا گیا ہے. ظاہر الفساد و فی البر بر باہر کا نقشہ ہے لیکن ایک استثناء کے ساتھ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے اور ان کا استثناء فرمایا گیا ہے. اس لیے اگر آپ باریک نظر سے دیکھیں تو یہ دو مختلف زمانے کی باتیں ہیں. ایک وہ زمانہ ہے جس کے متعلق فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اور وہ زمانہ ہے جب کہ اس فساد کو دور کرنے کے لیے ایک ہی سورج ظاہر ہوا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج ہے، اور اس کی شعاعوں اور اس کی روشنی کے نتیجے میں پھر نورانی وجود پیدا ہونے شروع ہوئے. لیکن جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں ہوئے، جب تک آپ کی فجر طلوع نہیں ہوئی، یہ رات مکمل رات تھی. مگر آخری زمانے کی جس رات کا ذکر سورہ عصر میں بیان فرمایا گیا اس میں مستثنا ساتھ ہی کر دیا، اور اس میں ایک یہ بھی خوشخبری ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر قیامت تک کوئی ایک ایسا دور نہیں آئے گا جس میں کچھ مومن اور کچھ صالحین ایسے نہ ہوں جن کو خدا تعالیٰ ہلاک ہونے والوں سے مستثنا قرار نہ دے دے. لازماً قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی نہ کسی شکل میں ضرور زمین پر جلوہ کر رہے گا، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آ سکتا خاص سارا زمانہ تاریکیوں میں ڈوب جائے کہ وہ تاریکیاں اس نور کو بھی غرق کر دیں. یہ ضرور چمکتا رہے گا اور امید کی کرنیں دنیا کو عطا کرتا رہے گا. پس والعصر میں جس اندھیری رات کا ذکر فرمایا، وہاں لیلۃ القدر کے مضمون کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے. فرمایا ہے روشنی مٹی نہیں ہے پوری طرح، ابھی موجود ہے. تم ٹٹولو اور دیکھو، اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو، اگر تم مومن ہو اور خدا کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو تو تم میں سے ہر ایک کے اندر استثناء کے امکانات موجود ہیں، اور وہ استثناء کامل اس طرح بنے گا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایسے لوگوں کو مستثنا کیا جائے گا جو صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لاتے بلکہ عمل صالح سے اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر اکیلے نہیں رہتے، اجتماعی کوشش کرتے ہیں. وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر. ان کے ذریعے رات کس طرح تبدیل کی جائے گی اور کیسے تبدیل کی جاتی ہے، اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. فرمایا ہے وہ ویسے بندے ہوں گے جو مستثنا ہوں گے گھاٹے والے زمانے سے، لیکن استثنا صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا. وہ اس بات پر راضی نہیں رہیں گے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے اور ہم ہلاک ہونے والے نہیں، بلکہ ان کی صفات یہ بیان فرمائیں، ایمان لانے والے ہیں محمد رسول اللہ پر، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور ان دونوں باتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ دعوت اللہ کرنے والے ہیں، اور اپنی خوبیوں کو زمانے میں پھیلانے والے اور اپنی نیکیوں کو دنیا میں بانٹنے والے ہیں. اور ان کا طریق کیا ہے؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. نیک نصیحت ان کا ذریعہ ہے، ان کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے. کوئی تلوار ان کے ہاتھ میں نہیں، کوئی نیزے کی انی نہیں ہے جس سے ڈرا کر اور سینوں کو چھید کر وہ دلوں میں ایمان داخل کرے. وہ نیک نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، اور نیک نصیحت ایسی جو حق کے ساتھ کرتے ہیں، حق بات کی کرتے ہیں، اور حق پر قائم رہتے ہوئے نیک نصیحت کرتے ہیں، اور پھر دنیا خواہ سنے یا نہ سنے مایوس نہیں ہوتے اور اپنی نصیحت پر قائم رہتے ہیں اور مستحکم ہو رہتے ہیں، ان کے پائے ثبات پہ لغزش نہیں آتی. نیک نصیحت کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کیسے ان کی نصیحت کا جواب دیتا ہے. چنانچہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر، وہ صبر کے ذریعے نیک نصیحت کرتے ہیں. मुसलसल करते चले जाते हैं, कभी नहीं थकते, और फिर दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं, जिसका मतलब है कि वो जमाना बहुत से दुखों में मुबतला होगा और उन इंसानों को सब्र की तलकीन करना उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होगा। बस वो खुद भी खुदा के साबित बंदे हैं, नेक नसीहत पर सब्र करके बैठ रहते हैं, हक बात की नसीहत करते हैं, और वो लोग जो बेचैन होते हैं कि ज़माने का क्या बनेगा, उनको भी सब्र की तलकीन करते हैं और उनको बताते हैं कि ये वो नूर है जो ज़ाया होने के लिए नहीं आया, ये वो नूर है जिसके मुकद्दर में सरिश्त नुस्खी जिसकी सरिश्त में नाकामी नहीं लिखी गई, ये लाजिमन गालिब आने वाला नूर है, क्योंकि ये वही नूर है जिसके मुतालिक कुरान करीम ने पहले बयान फरमाया है हत्ता मतलअल फजर, कि फजर तो लाजिमन तुलू होगी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके वजूद से ये अंधेरी रात एक कदर की रात में तब्दील हुई है, वो बिल आखिर उस रोशनी पर मुंतज हो जाएगी जिसे फजर की रोशनी कहा जाता है, जो सारे आलम को ढांप लेती है, और ये रोशनी आधे ज़माने के लिए नहीं रहेगी बल्कि ये दिन दूसरी दुनिया पर भी चढ़ेगा और लाजमन तमाम दुनिया इस नूर से इस्तेफादा करेगी। ये वो मज़मून है जो कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात को के इकट्ठे मुतालिया से बिलाशुबा बड़ी वाज़े तौर पर रोशन और वाज़े होता है। ये जो आयात मैंने तलावत की हैं जिनका सूरह दुखान से ताल्लुक़ है, इनका आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखरीन में बासल से ताल्लुक़ है, जिसकी खुशखबरी सूरह जुमा में दी गई थी, और इसीलिए इस लैलतुल क़द्र के ज़िक्र को दोबारा ज़िक्र को सूरह दुखान के साथ वाबस्ता फरमाया गया, क्योंकि इस सूरत में एक बहुत ही ख़तरनाक आलमी अंधेरे का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है हामीम, हम्द और मजद वाला खुदा है, वल किताबिल मुबीन, और इस खुली खुली किताब की कसम है, इस खुली खुली किताब की गवाही है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, कि हमने इस कुरान को जो साहिब हम्द और साहिब मजद खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है एक ऐसे तारीख ज़माने में उतारा है जिसे बरकत दी गई है, तारीख होते हुए भी वो बरकतों का ज़माना है, क्योंकि तारीख रातों में जो रोशनी पा जाता है उससे बढ़कर मुबारक और कोई नहीं हो सकता। दिन के ज़ाहिर होने पर जो रोशनी पाते हैं वो रोशनी तो हर कस व नाकस को मिल जाती है, मगर असल बरकतें उन लोगों के मुकद्दर में होती हैं जो अंधेरी रातों में रोशनियाँ पा जाते हैं। तो फरमाया कि एक ऐसे लंबी तवील रात का ज़माना आने वाला है जिसके मुतल्लिक हम तुम्हें पहले से ही खुशखबरी देते हैं कि उस रात के तमाम दुखों का इलाज कुरान करीम में है जो हमीद व मजीद खुदा की तरफ से नाज़िल किया गया। इसी किताब के नुज़ूल ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल दुनिया की अंधेरी रातों को मुबारक रातों में तब्दील कर दिया, लेकिन ये मुबारक रातें सिर्फ उनके लिए मुबारक होंगी जो कुरान करीम की रोशनी से फैज़ उठाएं, बाकियों के लिए तो वल असर इनल इंसान लफी खुसर की तकदीर जारी वसारी रहेगी। फिर फरमाया इन्ना कुन्ना मुंज़रीन, अब देखें खुदा ताला का कलाम कैसा फसीह बलीग है, लैलतुल मुबारका के बाद बज़ाहिर ये आना चाहिए कि खुश हो जाओ लैल मुबारक रातों का ज़माना आ गया, फरमाता इन्ना कुन्ना मुंज़रीन, हम तुम्हें डरा रहे हैं, पैगाम को समझो, रातें रातें ही हैं और उनके ख़तरात उसी तरह हैं, हम ये खुशखबरी दे रहे हैं कि हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़कर तुम्हारी अंधेरी जुल्म की रातें मुबारक रातों में तब्दील हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें ज़रूर कुछ करना होगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे और कोशिश नहीं करोगे मेहनत करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नूर से अपना ताल्लुक़ नहीं बांधोगे तो फिर तुम्हारी रातें मुबारक रातें नहीं बन सकेंगी। तो मुनज़रीन कहकर ये बात बयान फरमा दी और फिर अगली आयत में फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम में इसी मज़मून को मज़ीद वज़ाहत से बयान फरमाया। फरमाया वो कैसी रातें हैं, ये कैसा दौर है जिसमें कुरान करीम नाज़िल फरमाया गया है। ये ऐसा दौर है जिसमें फ़र्क करके दिखाया गया है, मिन युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। युफ़रक़ु का मतलब है खोलकर बयान कर दिया गया, तशहीर कर दी गई और फ़र्क करके तनीज़ करके दिखा दिया गया। किस बात में? अम्र हकीम में, हिकमत वाले अम्र में, यानी खुदा तआला की तरफ से जो अम्र नाजिल हुआ है कुरान करीम का इसमें, और अम्र का मतलब तकदीर भी है। हर अहम बात जिसका इंसान से ताल्लुक़ है वो अम्र इलाही से ताल्लुक़ रखती है, और अम्र का मतलब हुकूमत भी है। बस साहिब हुकूमत, साहिब क़द्र, साहिब जलाल खुदा की तरफ से जिसके सामने तमाम दुनिया बिल्कुल बेख्तियार और बेहसियत है, जिसका अम्र चलता है, किसी और का अम्र उसके मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं रखता। वो जब अपना अम्र जारी फरमाता है तो कोई साहिब अम्र रहता नहीं है। साहिब अम्र अंधेरों में, अपनी जहालतों में बसने वाले लोग बाज़ दफ़ा अपने आप को समझते हैं, वो समझते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए अम्र अता हुआ है और हम ही साहिब अम्र हैं। मगर कुरान करीम से पता चलता है कि अम्र सिर्फ खुदा के लिए है, और जब खुदा अपने हाथ में अपना अम्र ले लेता है तो सारे अम्र बातिल हो जाते हैं। फरमाया हमने फ़र्क करके दिखाने वाला कलाम नाज़िल फरमाया है, ऐसा कलाम जिसमें फ़र्क करके दिखाया गया है। हर ऐसे मामले में जो साहिब हिकमत है और इंसान की तकदीर से उसका ताल्लुक़ है, हर अमर हकीम को हर बद अमर से अलग करके दिखा दिया गया, ये माने बनते हैं। यानी हिकमतों के ख़जाने लुटाए गए हैं और उनमें कोई भी कंजूसी नहीं की गई। मिन कुल्ले अमरिन हकीम का मतलब यह है कि जितनी भी हिकमतें इंसान के मसाले और उनकी फवायद के लिए ज़रूरी थी उनसे, उन हिकमतों से ताल्लुक में तमाम उमूर बयान फरमा दिए गए और खोल कर बयान फरमा दिए गए। यानी इंसान की तमाम ज़रूरतें कुरान करीम ने पूरी कर दी, और जिस इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं उसको किसी रात का क्या डर रहता है। यही वो कुरान है जो लैला के यानी अंधेरे के ज़मानों को एक दायमी रोशनी के ज़माने में तब्दील करता है। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कलाम नाजिल हुआ, और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए इसी लिहाज से खुदा का नूर कहलाए। यानी आप में और कलाम में हकीकतन कोई फ़र्क नहीं रहा, जैसा कलाम इलाही था वैसे आप बन गए। जिन सांचों में कलाम इलाही इंसान को ढालना चाहता था, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं सांचों में ढलते चले गए। कलाम मुजस्सम नूर था, बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुजस्सम नूर हो गए। और ये वो नूर है जो लैलतुल क़द्र को दिखाई देना चाहिए, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर, कलाम इलाही का नूर, जो दर हकीकत एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बस आप अगर एक ज़ाहरी चमक को, एक बिजली की चमक को लैलतुल क़द्र समझकर अपनी ज़ात में खुश होते रहें तो आपकी मर्ज़ी है, जो चाहें सोचें और जो चाहें करें। लेकिन वो नूर जो दिल पर नाज़िल नहीं होता, जो जैसा कि मैंने खोल कर बयान किया है कुरान का नूर और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है, वो नूर अगर आपको नसीब नहीं होता तो हज़ार बिजलियाँ आप कर चमकती रहें आपके लिए रोशनी का पैगाम नहीं बल्कि हलाकत का पैगाम लेकर आएंगी, आपको गलत फहमियों में मुबतला करने वाली होंगी, आप धोखों में मुबतला हो जाएंगे, नफ्स के अंधेरों में और ज़्यादा डूब जाएंगे। आप समझेंगे कि आप अहलुल्ला बन गए हैं, वली बनकर उभरे हैं इस रात। लेकिन अगर दिल ने यह गवाही न दी कि आप पर कलाम इलाही का नूर नाजिल हुआ है, आपके अंदर एक पाक तब्दीली पैदा की गई है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका एक अटूट रिश्ता जोड़ दिया गया है, तब तक ये ज़ाहिरी इलामतें कोई भी हैसियत नहीं रखती। हाँ, अगर ये नसीब हो जाए तो फिर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार और मोहब्बत के सलूक के इजहार के तौर पर ये ज़ाहिरी इलामतें भी ज़ाहिर फरमाता है। अवियान में मुझे याद है बचपन के ज़माने में लैलतुल क़द्र की रातों की सुबह अक्सर लोग सवाल किया करते थे, कुछ ज़ाहिर हुआ। लेकिन बुजुर्ग सहाबा और आरिफ बिल्ला लोगों से जब भी ये सवाल किया गया है, उन्होंने अपनी कल्बी कैफियत को निशान बताया है। हमेशा यही कहा करते थे कि अल्लाह के फजल के साथ दिल पर जो कैफियत तारी हुई वो एक इंशराह की कैफियत थी, इनबिसात की कैफियत थी, रूहानी सुरूर की कैफियत थी। और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने कुछ ज़ाहरी नज़ारे भी ऐसे दिखाए जिनसे अंदरूनी कैफियतों को मज़ीद तकवीत मिली। लेकिन बच्चे बाज़ दफ़ा कह दिया करते थे कि जी हमने लैलतुल क़द्र देख ली, इत्तफाक़ से मौसम ऐसा था, रात बिजलियाँ चमकी और रोशनी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई और बच्चों ने समझ लिया जी हमने लैलतुल क़द्र देख ली। उनका शुगल ठीक था, नेकी की खातिर ये बचपन की बातें थी, मगर बड़ों को ये बचपन की बातें जेब नहीं देती, क्योंकि लैलतुल क़द्र का सारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अगर आप ये समझते रहें कि आपको ये मुबारक लम्हा नसीब हो गया है और ज़िंदगी तारीख है, तो कितना बड़ा धोखा है। इसकी कतई निशानी ये है कि इंसान के अंदर एक ऐसी पाक तब्दीली पैदा हो कि उसका माजी उसके मुस्तकबिल से जुदा हो जाए, उसके अंदर एक नया वजूद पैदा हो और उस वजूद की रोशनी फिर हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक ही आन में उसे कामिल तौर पर ना कुरान का नूर नसीब हो सकता है, ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से उसका कामिल ताल्लुक पैदा हो सकता है। फिर ये कौन सा नूर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये नूर वो क़द्र का नूर है, फैसले का नूर है। खुदा ताला की तरफ से एक फैसला आसमान से उतरता है दिल के नूर से ताल्लुक़ कायम करने के लिए, जो दिल का फैसला बनता है। ये दो नूर हैं जो मिलाए जाते हैं और यही वो नूर हैं जिनको कुरान करीम नूरुन अला नूर कहकर बयान फरमाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर आसमान से नाजिल हुआ था उसका जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है नूरुन अला नूर, दिल से एक शोला चमका था और फिर आसमान से वो नूर उतरा है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का या कुरान का नूर या खुदा का नूर कहा जाता है। बस ऐसा नूर हर दिल से दिल में से एक शोले की सूरत में उठना चाहिए। ये नूर उठेगा तो खुदा की तरफ से वो नूर नाजिल होगा और ये तकदीर है जो लैलतुल क़द्र की तकदीर से ताल्लुक़ रखने वाली तकदीर है, जो हर इंसान पर आ सकती है और हर इंसान के नसीब में है अगर वो चाहे तो। बस अपने अंदर दुआओं के वक्त कोई ऐसी पाक तब्दीली पैदा करना जिसके बाद आप दुनिया के ना रहें बल्कि खुदा के हो जाएं, और फिर खुदा ताला की तरफ से कबूलियत की कुछ इलामतें मुशाहदा करना जो आपके दिल को हिला कर रख दें और आपकी मौत को एक ज़िंदगी का नया पैगाम दे दें। वो मौत जो आपने खुदा की खातिर कबूल की थी, उस मौत को ज़िंदगी में तब्दील करें और खुदा की खातिर दुनिया से ताल्लुक का तोड़कर दुनिया के की रोशनियों से मुंह मोड़कर जब आपने अपने लिए एक किस्म का अंधेरा कबूल किया, तो खुदा ताला का नाजिल होने वाला नूर उस अंधेरे को एक दफ़ा रोशनी में बदल देता है, यानी ऐसी उम्मीद में तब्दील कर देता है जिसके बाद आपका नूर खुदा ताला के फजल और उसके मंशा के मुताबिक तदरीजन बढ़ता रहता है। बाज़ों में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ता है, बाज़ों में निस्बतन कम तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ता है और ये नूर इंसान की हिफाजत करता है। اور انسان کے لیے اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار سے کام لے. مغفرت کا اس نور کو بچانے اور سنبھالنے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. حقیقی لیلۃ القدر تو اسی کی ہے جس کا یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے. لیکن بعض دفعہ ایک انسان کو نور عطا ہوتا ہے لیکن اپنی غفلت سے اس کو سنبھال نہیں سکتا. اسے بچانے کے لیے اس کو جو کوشش کرنی پڑتی ہے اس کا نام استغفار ہے. جیسے بعض دفعہ دیا لے کر آپ چلتی ہوئی ہواؤں میں نکلیں تو کس طرح آگے ہاتھ رکھ رکھ کر, یا عورتیں بعض دفعہ اپنی چادر کے پلو ڈال ڈال کر اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ استغفار ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پناہ میں آنا, چھپنا, کسی بد اثر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا, اس سے تعلق توڑنا. بس ہواؤں سے اس طرح اپنے آپ کو بچانا یہ استغفار ہے. ہمیں یہ خوشخبری تو دی گئی ہے کہ جو نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اس کو دنیا کی کوئی آندھی بجھا نہیں سکے گی, وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا. لیکن ہر شخص کو اس بات کی ضمانت نہیں دی گئی کہ اس کا نور محفوظ رہے گا, بلکہ استغفار کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائی گئی کہ مسلسل اس نور کی حفاظت کی کوشش کرو. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ نور محمد مصطفیٰ کا نور لوگوں کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا, ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ ہمیشگی کا نور ہے اور خدا اس کی حفاظت فرما رہا ہے. لیکن اس ضمانت کے باوجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ والہانہ اس نور کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. دن کو بھی استغفار فرماتے تھے, راتوں کو بھی استغفار کیا کرتے تھے. زندگی کا ہر لمحہ اس نور کے گرد استغفار کی اشاریں قائم کرتا رہتا تھا اور ان کو مضبوط بناتا چلا جاتا تھا اور اونچا کرتا چلا جاتا تھا. بس خدا کی طرف سے جو اس نور کی حفاظت کا وعدہ ہے اس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل نہیں کیا, بلکہ اور زیادہ اس کی قدر کر دی, اور زیادہ آپ کی طرف سے اس نور کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے کوشش ہوئی. بس ہم پر بھی لازم ہے جو کمزور ہیں, اگر خدا تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے, اور خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو, کہ ہم بھی اس نور کی پھر حفاظت کریں اور دل و جان سے اس پر نگران رہیں. اپنے نفس کی پھونکیں ہیں جن سے ہمیں ڈر کی زیادہ ضرورت ہے. دشمن کی پھونکیں بے حقیقت اور بے معنی ہیں, لیکن نفس کی پھونکیں زیادہ خطرناک ہیں. وہ زیادہ اس نور کو بجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اس لیے یہ بھی دعا سکھائی گئی کہ ہم من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من سیئات اعمالنا, اے خدا ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں من شرور انفسنا, اپنے نفس کے شرور سے, ومن سیئات اعمالنا, اور اپنے اعمال کی بدیوں سے. یہ سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہے جو انسان پر ہو سکتا ہے, اور وہ شیطان اس نور کو بجھانے پر درپا ہوتا ہے جو انسان کے رگ و ریشے میں موجود ہے. اور یہ اسی شیطان کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے, شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, ہمارے اندر کچھ شرور ہیں دبے ہوئے. اور شر کا بھی ایک تعلق شعلے سے ہے, لیکن یہ شیطانی شعلہ ہے. یہ خدا کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش کرنے والا شعلہ ہے, اور اس کے مقابل پر جو آسمانی نور ہے اس کو نور کہا گیا ہے, نار نہیں فرمایا گیا. بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں ایسی حالت میں داخل فرمائے کہ ہم میں سے کثرت سے اس رمضان کے اس آخری حشرے میں ہمیں اس حالت میں داخل فرمائے کہ ہم میں کثرت سے لیلۃ القدر کی زیارت کرنے والے پیدا ہوں, ایسے خوش نصیب پیدا ہوں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور محمد کے نور کے ساتھ ایک دائمی تعلق عطا ہو, اور وہ تعلق ان کی سابقہ تمام زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے. ایسے لوگ اگر پیدا ہوں گے تو پھر زمانے کی تقدیر ان سے وابستہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا سورہ عصر میں ذکر فرمایا گیا, والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم زمانے کی قسم کھاتے ہیں, سارا زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان گھاٹے میں چلا گیا. مشرق بھی گھاٹے میں چلی گئی, مغرب بھی گھاٹے میں چلی گئی, شمال بھی اور جنوب بھی, کالے اور گورے اور زرد اور سرخ, تمام قومیں اس وقت گھاٹے کی حالت میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں سوائے خدا کے رسول, پاک رسول محمد مصطفیٰ کے شعروں کے, وہ مستثنا قرار دیے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں آپ کے اعمال میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زمانے کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ وہ قدر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. اے جماعت احمدیہ, اس قدر کی رات کی قدر کرو. تم نے وہ صبح طلوع کرنی ہے جو نور مصطفی کی صبح ہوگی, تم نے وہ صبح طلوع کرنی ہے جو نور فرقان کی صبح ہوگی, لیکن دعاؤں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ یہ جد و جہد کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا تمہیں خود یہ صبح نصیب ہو گئی ہے کہ نہیں. اگر تمہیں یہ صبح نصیب ہو گئی تو یاد رکھو کہ دنیا کی تقدیر بھی روشن ہو جائے گی, اور اگر تمہیں یہ صبح نصیب نہیں ہوئی تو کس روشنی سے دنیا کی تقدیر بدلو گے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.